अभिमन्यु एक बिजनेस पार्टी रखने जा रहा था जिसमें वो इशिका के जीवित होने की सच्चाई सबके सामने रखने वाला था। ये पार्टी राजवंश एम्पायर के मित्तल और सिंघानिया एम्पायर के साथ होने वाले बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए थी, इसलिए इसमें कई बड़े बिजनेसमैन आ रहे थे। मीडिया भी पार्टी को कवर करने वाली थी, इसलिए अभिमन्यु को ये सही मौका लगा। शाम के लगभग 6 बजे के करीब इशिका तैयार हो चुकी थी। युविका घर पर रहकर रूही को संभालने वाली थी। तैयार होने के बाद इशिका युविका के साथ कमरे से बाहर आई तो अभिमन्यु भी उस वक्त उसके कमरे की तरफ उसे लेने के लिए आ रहा था। अभिमन्यु ने इशिका को देखा तो वो उसे खोई हुई नज़रों से देखने लगा। वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु को इस तरह खुद को देखता पाकर इशिका के गाल लाल होने लगे थे। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में खोया हुआ देखकर युविका ने आंखें घुमाई और उन दोनों का ध्यान तोड़ने के लिए ताली बजाते हुए कहा, देखा, मैंने बिल्कुल सही कहा था। तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। पार्टी में जाने के बजाय दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताओ, ताकि पार्टी में दोनों को एक दूसरे को छुप कर ना देखना पड़े। युविका की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर इशिका के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। युविका को दिखाने के लिए अभिमन्यु ने इशिका की कमर पर हाथ रखा, ताकि वो उसे ये साबित कर सके कि एक दूसरे के करीब आने पर वो अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं। अभिमन्यु के हाव भाव को समझते हुए युविका ने कहा, कई बार आप काफ़ी बचकानी हरकतें करते हैं मिस्टर राजवंश। कल आप इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सफाई नहीं दे रहे थे और आज इस छोटी सी बात को साबित करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें देर हो रही है, अभिमन्यु ने जवाब दिया और इशिका की कमर पर हाथ रखे हुए ही उसके साथ बाहर जाने लगा। वे दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। युविका दूर से उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ते की दुआ मांगी थी ईशानी, जहाँ तुम्हारा पति तुम्हें हर तरीके से प्यार करे, सपोर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली तरुण ऐसा इंसान नहीं निकला, पर तुम्हारी बहन को एक अच्छा इंसान मिला है। कहीं ना कहीं युविका ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इशिका ईशानी की जुड़वा बहन है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद युविका कमरे के अंदर आ गई। वहीं अभिमन्यु इशिका के साथ गाड़ी में था। आगे ड्राइवर और पृथ्वी थे। अभिमन्यु ने पार्टीशन लगाया और फिर इशिका को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। इशिका का चेहरा अभिमन्यु की तरफ था और उस वक्त उसकी पलकें झुकी हुई थीं। क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है? मेरा मन अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही वक्त है जब लोगों को पता चले कि मैं मरी नहीं हूँ, इशिका ने हिचकिचाते हुए कहा। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिलहाल मुझे मेरे स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने दो। क्या तुम ऐसे ही पूरी जिंदगी स्ट्रेस रहने वाली हो? अभिमन्यु ने आंखें घुमाते हुए कहा, जिस पर इशिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। अचानक अभिमन्यु ने उसके होठों पर हल्का सा किस किया तो इशिका नजरें झुकाकर इधर उधर देखने लगी थी। भले ही वो अभिमन्यु के साथ थी, पर उसके दिल में राधिका के ही ख्याल चल रहे थे। इशिका को परेशान देखकर अभिमन्यु ने भी उसे अपने पास वाली सीट पर बिठा दिया। उसने इशिका का हाथ सहलाते हुए कहा, मुझ पर यकीन रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इशिका ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में वे दोनों पार्टी वेन्यू पहुंच चुके थे। अभिमन्यु किसी को लेकर पिछले रास्ते से अंदर गया था। वो सीधे उसे अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में ले गया, जहां वसुधा पहले से थी। वसुधा जी इशिका के जीवित होने की सच्चाई पहले से जानती थी, पर उसे इतने वक्त बाद अपने सामने देखकर उनकी पलकें भीगने लगी। वो जल्दी से उसके पास गईं और उन्होंने इशिका को अपने सीने से लगा लिया। बहू, मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़के को छोड़कर कभी मत जाना। ये बहुत लापरवाह है, अपना ख्याल नहीं रख पाता, फिर तुम क्यों इसे छोड़कर गईं? वसुधा भरी आवाज़ में इशिका से शिकायत कर रही थी। इशिका उनसे अलग हुई और मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं चाहकर भी आप दोनों से दूर नहीं जा सकती। कुछ मजबूरियां थीं जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए अलग होना पड़ा था, लेकिन अब हम फिर से साथ रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइए दादी, आपकी तबीयत कैसी है? आप टाइम से मेडिसिन ले रही हैं ना? हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों के बच्चे को खिलाए बिना मैं इस दुनिया से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। अब मुझे बताओ कि मुझे परदादी का बना रहे हो तुम दोनों, वसुधा ने कहा। एक बार फिर से वो अभिमन्यु और इशिका के सामने बच्चे की बात लेकर बैठ गई थी। पहले जब भी वसुधा इस बारे में बात करती थी तो इशिका या अभिमन्यु दोनों ही कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे, लेकिन इस बार इशिका ने सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्द ही दादी। इशिका के हाँ कहने पर वसुधा ने खुश होकर कहा, अब मेरी बहू ने हाँ कह रही है, तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है लड़के। वसुधा जी की बात के जवाब में अभिमन्यु ने कहा, हाँ तो मैं पीछे हटने कहाँ कह रहा हूँ दादी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल ले। अभिमन्यु और इशिका को साथ में कुछ देखकर वसुधा को बहुत अच्छा लग रहा था। वे सब साथ में ऐसे ही हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तभी इस बीच कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। अभिमन्यु खुद अनाउंस करने वाला था कि इशिका जिंदा है, इस वजह से उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने राजवंश फैमिली खड़ी हुई थी, जो पार्टी अटेंड करने के लिए दिल्ली आई थी। अभिमन्यु ने साइड हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। दरवाजे पर मौजूद प्रशांत, नकुल, उर्वशी और नक्श जैसे ही अंदर आए, उन्होंने इशिका को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि नक्श के चेहरे पर खुशी से मुस्कुराहट आ गई थी। नक्श ने उर्वशी की तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे कहा था ना मॉम, इशिका को कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। बोलते हुए वो इशिका की तरफ पलटा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसे गले लगाने जा रहा था, तभी अभिमन्यु ने अपना हाथ बीच में कर लिया। वो नक्श को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। नक्श फिलहाल कुछ भी कहकर मामले को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इशिका सही सलामत थी, यही उसके लिए काफी था। उसने सिर हिलाया और अपने कदम पीछे ले लिए। नक्श ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इशिका से पूछा, इशिका जब तुम जिंदा थी तो तुम्हें सबके सामने इस तरह दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुम एटलीस्ट हम घर वालों को तो बात कर सकती थी कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। नक्श की बात के जवाब में अभिमन्यु ने राजवंश फैमिली पर तंज कसते हुए कहा, ओ तो हम एक फैमिली हैं। प्रशांत उसकी बात से चिढ़ते हुए बोला, तुम हमें परिवार नहीं समझते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुमने ही हमें अपना नहीं समझा और अपनी पत्नी के जिंदा होने की सच्चाई छुपाई। इसका क्या मतलब निकालें अभिमन्यु, तुम्हें हम पर यकीन नहीं था? उर्वशी ने प्रशांत की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। राजवंश फैमिली फिर से आपस में बहस करने लगी थी। यही होता था जब वे सब एक साथ आते थे। वसुधा ने उन्हें शांत करवाने के लिए तेज आवाज में कहा, बस करो तुम लोग, जब देखो अभिमन्यु के खिलाफ कुछ न कुछ बोलने का मौका चाहिए। ये मेरा फैसला था कि अभिमन्यु बहू के जीवित होने के बाद किसी से ना कहे, किसी को सवाल करना है तो मुझे करो। दादी आप हर बार अभिमन्यु को बचा लेती हैं, नकुल ने जवाब दिया। हाँ तो तुम क्या चाहते हो, अपने पोते को तुम लोगों की बहस और घटिया नीयत का शिकार होने दूं? वसुधा ने गुस्से में कहा। उनकी याददाश्त गई थी तब उनका नेचर भले ही सॉफ्ट हो गया था, लेकिन वो काफी स्ट्रांग और डोमिनेटिंग वुमेन थी। वसुधा पहले की तरह बर्ताव कर रही थी।
वसुधा ने कुछ पल रुक कर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, अभिमन्यु ने खुद को दिल्ली में भी साबित कर दिया है। ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाए, फिर जिसे सीईओ की पोजीशन चाहिए वो अपनी कंपनी में बन सकता है। वसुधा के फरमान ने उन सब के चेहरों के रंग उड़ा दिए थे। हाँ, पर अभिमन्यु और इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। राजवंश एम्पायर का बंटवारा होने का सीधा सीधा मतलब था कि नकुल और उसके परिवार के हिस्से में ना के बराबर प्रॉपर्टी आने वाली थी। नकुल जल्दी से बोला, ठीक है दादी, हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर इसके लिए अलग होने की क्या जरूरत है? अभिमन्यु भी इस परिवार का हिस्सा है, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली आपस में झगड़ा कर रही है? ठीक है, यही बात है, तो देखती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को कितना सपोर्ट करते हो, ये तो आज की पार्टी में पता चल जाएगा, वसुधा ने सख्त आवाज में जवाब दिया। ये उन्होंने अभिमन्यु के साथ पहले ही प्लान कर लिया था। अभिमन्यु और वसुधा अच्छे से जानते थे कि अगर अभिमन्यु ने सबके सामने इशिका के जीवित होने की सच्चाई बताई तो सबसे पहले राजवंश फैमिली ही होगी जो उसके ऊपर सवाल खड़े करेगी। पब्लिक इमेज का नाम लेकर वे या तो इशिका से डिवोर्स लेने के लिए फोर्स करेगी या फिर सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए। बंटवारे का नाम आते ही सब परिवार के नाम पर एक साथ आ गए थे। पार्टी में गेस्ट आने शुरू हो गए थे। बाहर निकलने से पहले वसुधा ने कहा, ठीक है, फिर आज पार्टी में अभिमन्यु सबके सामने इशिका के जीवित होने की सच्चाई बताने वाला है, उम्मीद है तुम सब लोग उसे ही सपोर्ट करोगे। मजबूरी में सबको हाँ कहनी पड़ी। पार्टी शुरू होने वाली थी तो सभी एक एक करके कमरे से बाहर आ गए। कमरे में बस इशिका और अभिमन्यु ही बचे हुए थे। बाहर जाने से पहले अभिमन्यु ने कहा, मैंने पुलिस कमिश्नर से इस बारे में पूरी बात कर ली है, हमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी देर में सही टाइम आने पर मैं पब्लिक के सामने भी तुम्हारे जिंदा होने की सच्चाई बता दूंगा। वैसे भी तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मैंने नहीं निकलवाया था, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, दिशांग भी दो दिनों से हॉस्पिटल में है तो मुझे ही थोड़ा बहुत देखना होगा, इशिका ने जवाब दिया। इशिका को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर अभिमन्यु कमरे से बाहर आ गया था। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा वैसे ही कुछ लोग सतर्क हो गए थे, वे उन पर नज़र बनाए हुए थे। आखिर में ही उन्हें अपने मकसद को अंजाम देना था। ... असली धमाका तो अब होगा। आज दो पार्ट्स आएंगे, आगे का पार्ट भी पढ़ लेना, पढ़कर रेटिंग और कमेंट किया करो।